आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया ने नामजद वजीर आजम नरेन्द्र मोदी को मरकज में नई हुकूमत की तश्कील के लिए मदउ किया है। हलफ बरदारी की तकरीब राष्ट्रपति भवन में कल शाम 7:15 बजे मुनक्किद होगी। तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू को इस महीने की 12 तारीख को आंध्र प्रदेश के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। सीबीआई ने रेलवे के साबिक वजीर लालू प्रसाद और उनके कुनबे के अरकान नेज दीगर के खिलाफ हतमी फर्द जुर्म दाखिल कर दी है। ये फर्द जुर्म जमीन के बदले मुलाजमत के घोटाले के सिलसिले में दाखिल की गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 7 माओनवाज मारे गए हैं। और खेलों में आज लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नामजद वजीर आजम नरेन्द्र मोदी को मरकज में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदउ किया है। हलफ बरदारी की तकरीब राष्ट्रपति भवन में कल शाम 7:15 बजे मुनक्किद होगी। जनाब मोदी ने कल सदर जमहूरिया से मुलाकात की थी और नई हुकूमत की तश्कील का दावा पेश किया था। इससे पहले बीजेपी सदर जेपी नड्डा की क्यादत वाले एनडीए के एक वफद ने भी सदर जमहूरिया से मुलाकात की थी और एक खत पेश किया था जिसमें कहा गया था कि जनाब नरेंद्र मोदी को बीजेपी पार्लियामानी पार्टी का रहनुमा मुंतखब कर लिया गया है। एनडीए की हलीफ पार्टियों की मदद से मुतालिक ये खतूत भी सदर जमहूरिया के सुपुर्द कर दिए गए। राष्ट्रपति भवन के बाहर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एनडीए एक मजबूत मुस्तहकम और तरक्की पर मबनी हुकूमत तश्कील देगा। जनाब मोदी ने कहा कि सदर जमहूरिया ने उन्हें नामजद वजीर आजम के तौर पर मुकर्रर किया है और जनाब मोदी ने उन्हें मुतला किया है कि वह हलफ बरदारी की तकरीब के बारे में मुतमईन है जो आइंदा इतवार को मुनाकिद की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति भवन अब बकिया तफसीलात तैयार करेगा और तब तक वजीरों की कौंसिल की फहरिस्त सदर जमहूरिया को सौंप दी जाएगी।
एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेट के रूप में नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्री परिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे, उसके बाद शपथ समारोह होगा।
जनाब मोदी ने कहा कि अवाम ने एनडीए हुकूमत को एक और मौका दिया है और यह 18वीं लोकसभा एक नई नौजवान तवानाई का मरकज है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत मुल्क के अवाम की ख्वाहिशों और उमंगों को पूरा करेगी।
एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दो टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं 5 साल के कार्यकाल में भी हम उसी गति के साथ उतने ही समर्पण भाव से देश की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे।
नामजद वजीर आजम ने कहा कि मुस्तहकम हुकूमत भारत और उसकी मईशत नीज नौजवानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने मुल्क से जोर देकर कहा कि उनकी हुकूमत मुल्क को तेज रफ्तार तरक्की देने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी।
इन 10 साल के कार्यकाल के दरमियान भारत की वैश्विक जो छवि बनी है, दुनिया के लिए एक विश्व बंधु के रूप में भारत उभरा है, इसका मैक्सिमम एडवांटेज अब शुरू हो रहा है और मुझे पक्का विश्वास है ये 5 वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं।
राष्ट्रपति भवन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आईन की दफा 75(1) के तहत अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जनाब नरेंद्र मोदी को भारत के वजीर आजम के ओहदे पर फाइज किया है। सदर जमहूरिया ने जनाब मोदी से दरख्वास्त की है कि वह उन दीगर अफराद के नाम भी तजवीज करें जिन्हें वजीरों की मरकजी कौंसिल का रुकन मुकर्रर किया जाना है और वह यह भी बताएं कि राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद होने वाली हलफ बरदारी की तकरीब की तारीख और वक्त क्या होगा। इससे पहले दिन में एनडीए की पार्लियामानी पार्टी ने जनाब नरेंद्र मोदी को अपने रहनुमा के तौर पर मुंतखब किया है। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने जनाब मोदी को रिकॉर्ड तीसरी मियाद के लिए वजीर आजम मुंतखब किए जाने पर मुबारकबाद दी है। एक्स पर एक पोस्ट में टेक्नोलॉजी की कंपनियों के अरबपति ने कहा कि उनकी कंपनियां मुल्क में जल्द सरमायाकारी करना चाहती हैं। जनाब मस्क ने एक ट्वीट में दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी इंतखाबात में जनाब मोदी की जीत पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उनकी कंपनियां भारत में जोश व जज्बे के साथ काम करना चाहती हैं। टेस्ला भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करना चाहती है और बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की ख्वाहां है। दिल्ली पुलिस ने जनाब नरेंद्र मोदी के वजीर आजम के तौर पर हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान दिल्ली में पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर्स, बगैर पायलट के हवाई व्हीकल्स, यूएवीज और हॉट एयर बैलून्स के उड़ाए जाने पर पाबंदी आयद की है। यह पाबंदी 9 से 10 जून तक जारी रहेगी। राष्ट्रपति भवन में तीन मौकों पर मुनाकिद होने वाली चेंज ऑफ गार्ड तकरीब आज और इस महीने की 15 व 22 तारीख को मुनाकिद नहीं की जाएगी। सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट ने इसे मनसूख किए जाने की इत्तला दी है। वजीर आजम और वज़रा की कौंसिल की हलफबरदारी की तकरीब के सबब यह कदम उठाया गया है। यह तकरीब राष्ट्रपति भवन के अहाते में अमल में आएगी। इसके बाद सदर जमहूरिया पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को दिन में 11:25 पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हलफबरदारी की तकरीब विजयवाड़ा के नजदीक मुनाकिद होगी। तवक्को है कि एनडीए के सीनियर लीडर और पड़ोसी रियासतों के वजीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। 2014 में आंध्र प्रदेश को दो रियासतों में तकसीम किए जाने के बाद से यह दूसरी मरतबा है कि जनाब नायडू आंध्र प्रदेश के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। नीज वो पहले तेलुगु हैं जो चौथी मरतबा आंध्र प्रदेश के वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। एनडीए की इत्तेहादी तेलुगुदेशम पार्टी, जनसेना और भारतीय जनता पार्टी ने कुल 175 असेंबली सीटों में से 164 पर जीत हासिल करके जबरदस्त अक्सरियत हासिल की है। तेलंगाना में कांग्रेस ने जिमनी इंतखाब में ग्रेजुएट्स एमएलसी हलके में कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस के उम्मीदवार ने नलगुंडा, खम्मम, वरंगल ग्रेजुएट्स एमएलसी के जिमनी इंतखाब में थीनमर मलाना उर्फ नवीन कुमार ने कामयाबी हासिल की है। उन्होंने बीआरएस उम्मीदवार राकेश रेड्डी के खिलाफ आखिरी राउंड में यह कामयाबी हासिल की। सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से मुतालिक अपनी हतमी फर्द जुर्म दाखिल कर दी है। इस मामले में रेलवे के साबिक वजीर लालू प्रसाद यादव, उनके अहले खाना और दीगर मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं। खसूसी अदालत 6 जुलाई को फर्द जुर्म पर गौर खौस करेगी। जमीन के बदले मुलाजमत के मुबैना घोटाले में आयद करदा ताजा फर्द जुर्म के ताल्लुक से अदालत ने इससे पहले 4 अक्टूबर 2023 को लालू प्रसाद यादव, बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और दीगर को जमानत दे दी थी। एक और मामले में सीबीआई ने बीआरएस की लीडर के कविता के खिलाफ आबकारी पॉलिसी मामले के सिलसिले में दिल्ली कोर्ट में एक जिमनी फर्द जुर्म दाखिल की। खसूसी जज कावेरी बावेजा ने मामले की सुनवाई 6 जुलाई के लिए मुकर्रर की है। अदालत ने कविता की अदालती तहवील में 21 जून तक तौसी कर दी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन में कल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में 7 माओनवाज मारे गए। दांतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने आकाशवाणी न्यूज को बताया कि जाए वकू से हलाकशुदा माओनवाजों की लाशें बरामद कर ली गई हैं।
ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, इसमें दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर और जगदलपुर और कोंडागांव 4 जिले की डीआरजी की फोर्स एवं आईटीबीपी की फोर्स संयुक्त ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी। इस ऑपरेशन में कई बार रुक रुक कर एक्सचेंज ऑफ फायर और मुठभेड़ हुआ, जिसमें 7 वर्दीधारी नक्सली का शव हथियार सहित बरामद किया गया है। मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए, जिनको तत्काल वहां पर प्राथमिक उपचार किया गया और रेस्क्यू कर उनको उचित इलाज हेतु रायपुर ले जाया गया है। बाकी अभी टीम वापसी में है तो और भी नक्सली के घायल होने की संभावना है।
पुलिस अफसरान के मुताबिक यह झड़प नारायणपुर और दांतेवाड़ा जिलों की सरहद पर पेश आई। गोबिल के जंगल में माओनवाजों की मौजूदगी के बारे में खुफिया इत्तलात मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और आईटीबीपी की एक मुश्तरका टीम ने तलाश की कार्रवाई शुरू की थी। तलाश की कार्रवाई के दौरान गोबिल के जंगलात में यह झड़प शुरू हो गई। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इत्तलात और नशरियात की वजारत मुश्तरका योग प्रोटोकॉल के बारे में बेदारी लाने के लिए बहुत से प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी। اطلاعات و نشریات کے سیکرٹری سنجے جاجو اور سیکرٹری آیوش ویدیا راکیش کٹیجا نے کل نئی دلی میں یوگ کے 2024 کے بین الاقوامی دن کی سرگرمیوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا. سرکاری براڈ کاسٹر پرسار بھارتی، دور درشن اور آکاشوانی نیٹ ورک کے ذریعے مختلف پروگراموں کا براڈ کاسٹ اور ٹیلی کاسٹ کرے گا. وزارت نے بتایا کہ دور درشن یوگ ماہرین کے انٹرویوز براڈ کاسٹ کرے گا، جس میں صبح کے وقت خصوصی لائیو شو بھی شامل ہے. آکاشوانی یوگ کو ایک طرز زندگی کے طور پر اور عوام کی مجموعی صحت کے طور پر فروغ دینے کے مقصد سے پروگرام براڈ کاسٹ کرے گا. یہ پروگرام یوگ کے مورارجی دیسائی نیشنل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کر پیش کیے جائیں گے. آیوش کی وزارت نے ایک یوگ گیت تیار کیا ہے جو میڈیا کے سبھی پلیٹ فارمز پر بجایا جائے گا. بھارتی ریزرو بینک نے صارفین کی سہولت میں اضافے کے مقصد سے یہ تجویز پیش کی ہے کہ فاسٹیگ اور نیشنل کامن موبیلٹی کارڈ NCMC کو ای مینڈیٹ کے فریم ورک میں شامل کیا جائے. ایک سرکاری بیان کے مطابق RBI نے صارفین کی طرف سے مقررہ حد سے کم رقم کی خود بخود دوبارہ ادائیگی کی سہولت شروع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. اگرچہ RBI نے رقم کے اس بار لین دین کے لیے ای مینڈیٹ کی اجازت دی ہے، لیکن اس طرح کی ادائیگیاں جیسے بھی اور جب کبھی ضرورت ہوتی ہے کر دی جاتی ہیں، لہذا نئے سرے سے اس ادائیگی کے لیے کوئی وقت یا مخصوص رقم مقرر نہیں ہے. اناڈو کے بانی اور میڈیا کی ایک مقبول شخصیت راما جی راؤ کا حیدرآباد میں آج صبح انتقال ہو گیا. وہ 88 برس کے تھے. جناب راؤ کو اس مہینے کی 5 تاریخ کو شہر کے نانک رام گوڑا علاقے میں ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا. وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے. بھارتیہ محکمہ موسمیات IMD نے کیرلا، کرناٹک اور مہاراشٹر میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کے تناظر میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے. بحر عرب کے وسطی کئی مزید حصوں مہاراشٹر، تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، جنوبی اوڈیشا اور خلیج بنگال میں اگلے 2 سے 3 دنوں کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کے لیے حالات مزید سازگار ہیں. محکمے نے پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی اور راجستھان میں آج گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی ہے. نیز اگلے 7 دنوں کے دوران شمال مشرقی خطے، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں دور دور تک گرج چمک و تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات نے اتر پردیش میں شدید گرم لہر کے تعلق سے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اس دوران مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ، بہار، اڈیشا، پنجاب اور ہریانہ میں اگلے 2 سے 3 دن تک موسم کی صورتحال میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. بہار، مغربی بنگال کے گنگا کے علاقے اور جھارکھنڈ میں اگلے 2 دن تک گرم و مرطوب موسم رہنے کا امکان ہے. FIH ہاکی پرو لیگ 2023-24 میں بھارتی ہاکی ٹیم کے اب 2 میچ باقی رہ گئے ہیں. آج بھارتی ٹیم جرمنی کے خلاف اپنا میچ کھیلے گی. اس کے بعد اس مہم میں اونچا مقام حاصل کرنے کی کوشش کے طور پر اختتامی میچ اتوار کے روز لندن میں میزبان برطانیہ کے ساتھ کھیلے گی. اس وقت بھارتی مردوں کی ٹیم درجہ بندی میں 4th مقام پر ہے. وہ 14 میچوں میں اب تک 24 پوائنٹس حاصل کر چکی ہے. اس دوران اس کی مد مقابل ٹیمیں جرمنی اور برطانیہ بالترتیب 6ٹے اور 7ویں مقام پر ہیں. یہ ٹیمیں اس لیگ میں اب تک 7 میچ کھیل چکی ہیں. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر.
شکریہ شبانہ. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخباروں نے جناب مودی کو NDA کا لیڈر منتخب کیے جانے کے بعد حکومت سازی کا دعویٰ پیش کرنے کی خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سجد جمہوریہ نے انہیں حکومت سازی کی دعوت دے دی ہے. حلف برداری کی تقریب کل شام عمل میں آئے گی. روزنامہ پرتاب اور انقلاب نے جناب مودی کو قومی جمہوری اتحاد NDA کا لیڈر منتخب کیے جانے کے بعد بی جے پی کے سینئر لیڈروں LK اڈوانی اور مرلی منوہر جوشی سے ملاقات اور آشیرواد لینے کی خبر کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے. کیو ایس ورلڈ رینکنگ میں بھارت کے 46 اداروں کو جگہ ملی. اس خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اہمیت دی ہے، جس کے تحت اس ورلڈ رینکنگ میں بھارتی اداروں کی موجودگی 318% ہو گئی ہے. اس پیش رفت پر نامزد وزیراعظم نریندر مودی نے طلبہ، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کو مبارکباد پیش کی ہے.
آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ نے نامزد وزیراعظم نریندر مودی کو مرکز میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے مدعو کیا ہے. حلف برداری کی تقریب راشٹرپتی بھون میں کل شام 7:15 بجے منعقد ہوگی. تیلگو دیشم پارٹی کے صدر این چندر بابو نائیڈو کو اس مہینے کی 12 تاریخ کو آندھرا پردیش کے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا جائے گا. CBI نے ریلوے کے سابق وزیر لالو پرساد اور ان کے کنبے کے ارکان نیز دیگر کے خلاف حتمی فرد جرم داخل کر دی ہے. یہ فرد جرم زمین کے بدلے ملازمت کے گھوٹالے کے سلسلے میں داخل کی گئی ہے. چھتیس گڑھ کے بستر ڈویژن میں حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں 7 ماؤ نواز مارے گئے ہیں. اور کھیلوں میں آج لندن میں ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ میں بھارت کا مقابلہ جرمنی سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.